मेरा नाम अतीक रजा है और मैं गुजरावाला का रहने वाला हूँ और फैजान अख्तार में खताबत की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द है। हजरत, आपसे सवाल ये है कि मुक्तदी और कमेटी इमाम को एक तरह का खादिम समझती है और आकर तरह तरह की डिमांड करती है, इमाम साहब ये स्टाइयें साफ नहीं है, इमाम साहब ये वजूखाने में पानी गर्म नहीं है, इमाम साहब ये गीजर नहीं चला, तो एक इमाम के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना कैसा, इस बारे में आप इरशाद फरमाएं।
अब अगर इमाम को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि गीजर आपने ऑन करना है, इजारे में अगर उसके शामिल पहले से किया हुआ है, बाज इमाम ये होते हैं कि साफ सफाई भी उनके जिम्मे होती है, अजान भी उनके जिम्मे होती है, मस्जिद इस तरह की होती है जहां आबादी नहीं होती ज्यादा, तो इमाम सारे काम करता है, तो अब जिस चीजों का जिन चीजों का इजारा उससे किया है सारा हतन, अब वो उस इजारे में इमाम कोताही करता है तो अब इंतजामिया बोलेगी तो सही ना, बोलेगी भी और जरूरत पड़ेगी तो माजरत भी कर लेगी।
कैसे बोलेगी?
इसलिए इमाम को भी बड़ा दिल रखना चाहिए। रहा यह कि इंतजामिया, तो उनको भी चाहिए कि वो इमाम का एहतराम करें और वाकई इसको अपना खादिम ना समझें बल्कि अपना मखदूम जाने। बाज औकात ऐसा भी होता होगा कि इमाम साहब पर खामा खा, मतलब यानी कि बाज इंतजामिया वाले वो चढ़ाई करते रहते होंगे, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, लेट क्यों आए, घड़ी देखो, बल्कि वो ये तो इमाम साहब के लिए सबसे बड़ा मतलब यानी कि बटन ये खौफजदा कर लेगा कि इमाम जब आए ना और अगर मुतवल्ली बैठा हो और घड़ी देखे, इमाम की आधी जान तो निकल जाती होगी अगर ये लेट है तो इसलिए वो एहतियात तो करनी है कि वो टाइम टू टाइम जमात शुरू हो जाए, और इसमें आफियत भी है, इसमें तनफीर भी नहीं होती इससे अवाम की, और बाद लोगों की मुश्किलात भी होती है, बड़े बूढ़े जो होते हैं इनको पेशाब जल्दी लगता है, अब इमाम लेट आएगा वो उसको बेचारे को पेशाब लग जाएगा नमाज के दौरान, तो ये काम से गया ना, कि अगर शिद्दत हो जाए पेशाब की नमाज के दौरान भी तो नमाज तोड़ना वाजिब हो जाएगा, तो मकर तहरीम ही होगी वरना नमाज गुनाहगार होगा। और भी किसी की गाड़ी छूट रही है, किसी के बस का टाइम है वगैरह वगैरह, तो इसलिए टाइम टू टाइम होना चाहिए, जो भी टाइम दे उस पर इमाम अगर दो मिनट पहले मुसल्ले पर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, ना आए तो इससे मुतालबा नहीं किया जा सकता, उसको यही अर्ज किया जा सकता है कि आप टाइम पर जमात खड़ी हो जाए, तो ये हर्ज नहीं है। इंतजामिया अगर ये दरखास्त करती है अच्छे अंदाज में मदीना मदीना, अलबत्ता ये कि इमाम पर अपना खामा खा का रोब ना झाड़े इंतजामिया, उनको तंग ना करे, तनख्वाह लेट दी या तंग किया इसको खामा खा मतलब घसीटते रहे, ये भी कर लो वो भी कर लो जो उसके इजारे में शामिल नहीं है, तो ऐसे काम में भी अगर रिक्वेस्ट करेगी ना तो इमाम को बुरा नहीं लगेगा, खाली बाय ऑर्डर करेंगे ना कोई काम करवाएंगे ना तो बुरा लगेगा, मौलाना अगर यूं कर दो तो आपकी मेहरबानी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस अंदाज में कहेंगे तो इमाम को क्यों बुरा लगेगा यार, तो बोलने का अंदाज है, बैठो पछड़ाओ, हम ये पछड़ाओ वाला अंदाज करेंगे तो जाहिर है कि वो बात तो वही है बैठने की लेकिन बुरा तो लगेगा ना। इंतजामों की चाहिए कि वो इमाम पर मुअज्जिन पर खादिम पर सब पर शफकत करे और इन तीनों को मिलाकर रखे और इन सबको यूं समझाती रहे इंतजामिया कि यार कभी मुअज्जिन की तबीयत 19-20 से आगे पीछे तो इमाम सब आवाज़ान दे दिया करें, ये भी तो सवाब का काम है, इसी तरह इन दोनों को समझा मुअज्जिन का कभी खादिम आगे पीछे हो जाए, इंसान है हम लोग भी तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो यार ये झाड़ू रखी हुई है आप मस्जिद में झाड़ू निकालना ये कोई गुनाह का काम तो नहीं है, इमाम साहब को चाहिए खादिम के हाथ से झाड़ू छीन ले अपनाइयत में कि आज तो ये सवाब मैंने लेना है, आज मस्जिद के झाड़ू मैं निकालूंगा, तुम बैठ जाओ इधर, ऐसी मोहब्बत हो जाएगी आपसे उसको याद करना।
कभी ऐसा ना हो बापा, कभी ऐसा ना हो कि जैसे मोजिन साहब के हाथ से खादिम इमाम साहब ने झाड़ू छीन ली आज तो मैं निकालूंगा, तो चेयरमैन आवे कमेटी का इमाम साहब के हाथ से झाड़ू छीन ले नहीं आज तो मैं सभा कमाऊंगा, ऐसा ना हो सके कभी?
ऐसा ऐसा भी होना चाहिए, होता भी हो क्या पता, मगर मैं समझा आप यूं बोलेंगे कि इमाम ने तो छीनी झाड़ू तो खादिम आया उसने बोला उसने छीना मुसल्ला, क्या मैं नमाज पढ़ाऊंगा मैं सवाब कमाऊंगा, तो खादिम साहब ऐसा ऐसा मत करना। बड़े छोटों पर शफकत करते हैं तो वही अंदाज शफकत वाला छोटों का बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, और इमाम साहब को झाड़ू देनी भी नहीं चाहिए। ये बोलता रहे इसमें आप ये एक बार दोगे ना दोबारा इमाम साहब लेंगे नहीं आपसे शायद, बोले यार ये तो पकड़ा देगा झाड़ू। दोबारा इखलास के साथ आप आपस में मोहब्बत से प्यार से इस तरह तरकीब करते रहेंगे, कभी खादिम को पानी पिला दिया, कभी मोहसिन साहब को तोहफा दे दिया, कभी इन्होंने तोहफा दे दिया, कुछ ऐसी खिदमत एक दूसरे की करते रहेंगे ना मोहब्बत से प्यार से, तो इंशाल्लाह गुनाहों के दरवाजे बंद होंगे, सवाब मिलेगा, आपस में मोहब्बत की फजा कायम होगी, मिलजुल कर मस्जिद का निजाम भी अच्छा रहेगा। इस तरह जो मस्जिद वाले भी हैं वो भी झाड़ू निकाले, वो खाली रोब झाड़ने के लिए थोड़ी है, ये भी झाड़ू निकालें, पोछे लगाएं मस्जिद में, दरिया बिछाएं, ये सब कुछ इनको भी करना चाहिए जहां जब जब मौका मिले, और करते भी हैं, ऐसा नहीं नहीं करते, एक तादाद होगी जो इस तरह के काम मस्जिदों के माशाल्लाह खिदमतें करते हैं मस्जिदों वाले, मुझे पता है, तो करनी चाहिए सबको शहादत समझ कर, दिखावे के लिए नहीं अल्लाह की रजा के लिए। और ये जो मस्जिदों में याद आ गया मुझे, ये फौरन बत्तियां जला देते हैं, यानी अजान तो हुई कि नहीं हुई सारी मस्जिद की बत्तियां पंखे बाजू का चल पड़ते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, आखिरत में जवाब देना है, बल्कि ये तो बिजली का सीधा सीधा जाया करना है जबकि इसकी हाजत नहीं है। तो इसलिए नमाज का वक्त आ गया वाजिबी सा, ये पता होता है कि किस टाइम पर नमाजी आने शुरू होते हैं और कितनी देर में कहां तक पहुंचते हैं, तो वो खादिम की सी तरबियत हो के वो उतनी जरूरत के मुताबिक वो बत्ती पंखे रोशन करता रहे, एक दम सब रोशन कर देना ये नहीं ठीक गलत, जरूरत के मुताबिक, तो जैसे जरूरत पूरी हो गई बत्तियां बंद कर दी जाए, हसब जरूरत जो रोशनी की जरूरत होती जैसा उर्फ होता है उसके मुताबिक बत्ती जलाकर रखी जाए। अच्छा इसी तरह माइक दुरुस्त करते वक्त इमाम के लिए माइक दुरुस्त करते हैं, खुतबे के लिए माइक दुरुस्त करते हैं, इकामत के लिए माइक जब सेट करते हैं, इस वक्त खड़खड़ाटी बहुत होती है, इस खड़खड़ाटी से जान छुड़ाने के लिए क्या ही अच्छा हो कि कॉलर माइक का इस्तेमाल करें आप लोग, कॉलर माइक में ये मुसीबत नहीं होती, बहुत आसानी होती है ये खड़खड़ाटी के ताल्लुक से। अच्छा फिर ये कि अगर सेट करना भी है तो मतलब पहले से कोई सी ऑन किए बगैर अगर सेट कर लिया तो खड़खड़ाटी इसकी ना आवाज पैदा नहीं होगी, उन्हें ऐसी खड़खड़ाटी होती है कि आदमी वो रकतें भूल जाते होंगे जो उत्साह तबीयत के हों। माइक ऑन करके ये सेट करना, या आवाज है बयान है खुतबा है किसी में भी, और खुतबे में तो जब खुतबे की अजान हो रही है तो क्या मुक्तदी क्या मुतवल्ली क्या मोज़िन, ये सब मोज़िन भी अजान देकर बैठ जाए, अब कोई हरकत कोई काम काज नहीं करना है। तो अब इमाम खुतबे मिंबर पे खड़ा होता है, अब ये खर खर करके वो मोज़िन या खादिम जो ये माइक को सेट कर रहे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, माइक पहले से सेट होना चाहिए, और अजान मस्जिद के बाहर होनी चाहिए, ये जुम्मे की जो दूसरी अजान होती है खुतबे की अजान, ये मस्जिद में नहीं दी जा सकती, ये भी बाहर देनी होती है। इस तरह पहली अजान जो होती है ना ये भी सुन्नत यही है कि मस्जिद से बाहर हो, अंदर नहीं होनी चाहिए, ये मसाइल ख्याल रखिएगा, नाराज भी नहीं होना, ये बिल्कुल ये मसाइल है, ये सुन्नतें छूट रही हैं आजकल मस्जिदों में, बहुत मसाइल है जहां से लोगों को मसाइल में रहनुमाई मिलनी चाहिए, वहां अब मसाइल का अंबार लगा हुआ है, इतने मतलब वहां इतनी कोताहियां हो रही हैं, इतनी सुन्नतें छूट रही हैं, इतने वाजिबात छूट रहे हैं, बाजूकत मिंबर बीच में बना होता है सफ के, और जगह बहुत होती है पीछे, लेकिन वो पहली सफ जो है वो मिंबर बीच में वो कटिंग सफ कता हो गई, सफ कता करना हराम, सुतूनों के बीच में सफे बनी हुई होती है कोई बोलने वाला नहीं है, ये सफ कता करना काटना हराम, ये कब इन जगहों पर खड़े होने की इजाजत मिलती है जबकि इसका उज्र हो। मिसाल के तौर पर अब मस्जिद में जगह ही नहीं है, इतनी भीड़ है और ये इस तरह की तरकीब हो गई। अच्छा, या ऐसा है कि जगह तो है लेकिन खुला आसमान है, बारिश हो रही है, बारिश में बारिश ऐसी नहीं कि दो चार बुंदकियां जब पड़ती हैं तो इसको ये बारिश तकलीफ देनी होती है, ऐसी तकलीफ दे बारिश। या धूप है, सख्त धूप है, सर्दियों की धूप में तो मजा आता है ना, सख्त धूप है, तो इस तरह का कोई उज्र हो ना तो ठीक है उन जगहों पर रश के मौके पर वो सफे बना ली जाए, वरना सफे नहीं बना सकते उधर बिना उज्र। लेकिन मस्जिदों में कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता। इमाम साहिबान बाज मसाइल जानते भी होंगे, वो भी बोलते हुए डरते होंगे कि बड़े बूढ़े झगड़ा करेंगे, तो यूं इंतजामिया अगर इसमें इमाम साहब का ताउन करेंगे तो फिर आपकी जब पीठ पर हाथ होगा ना इमाम के पीठ हो जाएगी मजबूत, फिर ये मसाइल बताएंगे ना तो इंशाल्लाह वो मदीना मदीना हो जाएगा, आपको भी सवाब मिलेगा। तो माइक का मसला भी हल करना है, तो खुतबे के दौरान लोग गर्दने फलांग कर आ रहे होते हैं और बहुत कहने के इसमें भी मसाइल ही मसाइल होते हैं, खतीब साहब खुतबा दे रहे हैं एन सामने आकर लोग सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं, या एक सामने कोई सुन्नत पढ़ रहा होता है अपनी एन मिंबर के सामने, खतीब साहब आकर वो मिंबर पर बैठ गए, अब वो पहले से नमाज पढ़ रहा है, अब खतीब आकर बैठा, जो नमाज पढ़ रहा उसके सामने चेहरा करना, तो ये अभी इमाम पर इसका मकूरे तहरीमी का रात आई। और अगर पहले से इमाम बैठ गया है, अब किसी ने उसके चेहरे के सामने नमाज शुरू की, अब शुरू करने वाले पर करात आई, तो इसके ऐसे एहतमाम करने चाहिए कि वो जगह की ऐसी तरकीब हो, ऐसी चीज वहां रख दी जाए, कोई वो ऐसा एहतमाम किया जाए कि खतीब जब तशरीफ लाए मेंबर पर लेट भी ना हो, इंतजार भी ना करना पड़े, और कोई सामने उस वक्त नमाज पढ़ भी ना रहा हो। जगह तो आमतौर पर मस्जिदों में बहुत होती है कि वहीं आकर पढ़ना है उसने, वो भी आखिरी वक्त में जब खतीब साहब ने आना है मेंबर पर, तो ये सारे मसाइल देखिए आप मिलजुल कर सर जोड़कर बैठेंगे अल्लाह के खौफ का जाम पीकर, तो इंशाल्लाह इन सब का रास्ता मिलेगा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद जो है, उनसे आप ये मशवरे करके चलेंगे तो अल्लाह करेगा तो बहुत सवाब मिलेगा। और इंतजामिया को ये मसाइल भी सीखने चाहिए, इनको पता भी तो नहीं होते ना, वक्फ के मसाइल बहुत पेचीदा है, ये सब इनको सीखना चाहिए। और मैं तो इमाम साहिबान को भी मशवरा दूंगा कि एक नमाज कोर्स आप हमें खिदमत का मौका दें, फैजान मदीना में या जहां जहां होता है वहां कर लें नमाज कोर्स, इसमें आपकी किराअत की भी मजीद इंशाल्लाह दुरुस्ती, बाजों की किराअत भी दुरुस्त नहीं होती तो ये दुरुस्त हो जाएगी, दीगर मसाइल अगर आपको आते भी हैं तो मजीद पुख्तगी हो जाएगी इंशाल्लाह। गलत फहमियां होंगी कि यार मैं मसला तो यूं है, फिर वो पता चला भाई मसला तो यूं नहीं हो, यूं है, ये इधर सब सीखने से आएगा। खाली खुशफहमी के मैं बचपन से नमाज पढ़ता हूं तो 100 साल के नमाजी को भी मसले नहीं पता होते। हजरत मौलाना कारी मुसलहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की जबानी मैंने ये सुना था एक बार इनके जुम्मे के बयान में, गालिबन जुम्मे का बयान था, इन्होंने फरमाया कि एक बुजुर्ग जो थे इन्होंने अपने बेटे को राय खुदा में भेजा इल्मे दीन हासिल करने के लिए, 10 साल के बाद उनका कोई खत मिला, पहले तो खत तो हमारी आजकल जब है कम्युनिकेशन ऐसा तो था नहीं निजाम, 10 साल के बाद वो पैगाम मिला कि अबू अब मैंने नमाज के मसाइल सीख लिए हैं, 10 साल में मैंने नमाज के मसाइल सीख लिए। तो यूं मतलब नमाज के मसाइल सीखना आप बोलोगे एक कोई छू करे और सारे मसाइल पता भी चल जाए और याद भी रह जाए और अमली जामा भी वो पहन ले, ये जरूरी नहीं है, मालूम होते हैं लेकिन अमली जामा पहनाना ये भी तो एक मसला है ना, हमको तवज्जो नहीं होती, रुकू में हमारी पीठ सही बिछी हुई है कि नहीं, सज्जे में उंगलियों का जैसे मैंने अर्ज किया वो लगे हुए कि नहीं, ये तो दूसरा जो मोहतसिब होगा वो मुकर्रर करेंगे कि हमें देखकर बताए तो पता चलेगा ना कि हम समझते हैं कि सब सही हो रहा है, शेर बकरी की घाट पर पानी पी रहे तो पता चला शेर बकरी को हजम कर भी लिया, डकारे भी लेकर निकल चुका है हमको सभी करने से होगा. ये जब हमारा ये दिल में हकीकी माने में खौफ खुदा आ जाएगा ना कि हमको मतलब वो नमाज पढ़नी है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आयन शरीयत के मुताबिक हो, तो उसके लिए बहुत आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी. नमाज के अहकाम है, इसको पढ़े 12 मरतबा पढ़े, इसको एक बार तो नहीं गुजारा होगा. बाहर शरीयत के ये मुतल्लिका जो हिस्से हैं इनको पढ़े, इनको रटे. अब क्यों मतलब सबका बोझ ले रहे हैं आप, मतलब क्या कर रही है? चंद सिक्कों के लिए सबका बोझ उठाना है, आखिरत में क्या होगा? इसलिए अपना बिल्कुल ये नहीं कि वो मसाल घी गुड़ जैसे आपके मतलब पक्के होने चाहिए. नमाज में एक भी मतलब कोताही अपनी तरफ से ना हो, इसका ख्याल रखना है. ये सीखने से आएगा, बार बार मुताला करने से आएगा, मुफ्तियान किराम से पूछने से आएगा. जहां भी समझ नहीं आई, अब तो माशाल्लाह टेलीफोन पर भी मसाले बताए जाते हैं दारुलफ्ता अहले सुन्नत में, तो फोन उठाया पूछ लिया. इस तरह इंशाल्लाह आप चलेंगे ना तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, आपको खुद रूहानियत भी मिलेगी, खुशू और खुशू मिलेगा. और नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है. इन्नत सलाता तनहा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से मना करती है. तो ये सब इनका जहूर होगा ना जब हमारी नमाजें सही मानों में नमाजें होंगी. अल्लाह ताला नसीब कर दे सही नमाजें. ये इमाम को तो बिल्कुल सही, क्या सही तर होनी चाहिए, इसके साथ बहुत सारे वाबस्ता है. मगर अवाम को भी गफलत नहीं करनी चाहिए कि अकेले की नमाज भी ऐसी नहीं है कि नऊज बिल्ला इसमें अंधी चलाई जाए. इसको भी बिल्कुल 100% दुरुस्त ही रखना है. तो इमाम को 112% दुरुस्त रखना है. इस पर ये दूसरों का जामिन जो है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद.